इशिका सोर्सेज लाइब्रेरी के अंदर थी। उसे वहां रोहन ने कुछ डेटा लेने के लिए भेजा था। इशिका वहां किताबों में खोई हुई थी, तभी अभिमन्यु वहां पर आया। अभिमन्यु ने देखा नक्श भी वहीं पर था। वो इशिका के साथ बदतमीजी पर उतर आया था। नक्श किसी भी तरह इशिका को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इशिका ने जैसे तैसे नक्श को डाला और वहां से जाने को हुई, लेकिन नक्श फिर से उसके सामने आ गया। नक्श ने खुद को सख्त करके कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हें न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेजा गया है। तुम टीम वन में हो और रोहन ने आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो मेरा बॉस है, अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो उन्हें मुझे डांटने का पूरा हक है, इशिका ने जवाब दिया। वास्तव में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोहन उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई और तुम पर आकर रौब जमाए। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर टीम टू में करवा रहा हूँ और उसका हेड मैं हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ इशिका, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो और कॉम्पिटिटिव भी। तुम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाओगी और बहुत आगे तक जाओगी। फिर तुम्हें ये छोटी मोटी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हुए कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर पाएगा, नक्श ने इशिका को समझाते हुए कहा। एक बार फिर उसका इशारा इसी तरफ था कि इशिका उसके पास आ जाए। इशिका ने गहरी सांस ली और सीधे सीधे पूछा, अब बात को घुमाए फिराए बिना सीधे सीधे बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। अपने पति को डिवोर्स दे दो और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, नक्श ने जवाब दिया। जब उसे लगा कि इशिका उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी तो वो आगे बोला, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कैसे किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ? रात को तुम दोनों के बीच क्या होता होगा ये ख्याल ही मुझे पागल कर देता है। जस्ट शट योर माउथ, इशिका गुस्से में तेज आवाज में बोली। आगे से मेरे सामने इस तरह की बकवास मत करना। अपनी गंदी सोच को खुद तक रखोगी तो बेटर होगा। वैसे भी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए मैं उसे छोड़ दूं। अब तो नक्श गुस्से में पागल हो गया था। इशिका अपने आवारा पति को उससे बेहतर बता रही थी, ये उससे कैसे सहन होने वाला था। अच्छा तो अब तुम्हें उससे ज्यादा प्यार हो गया? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? उस जैसे लोगों को मैं अपनी उंगलियों पर रखता हूँ। एक फोन कॉल लगेगा उसे धमकी देते हुए। खैर इसे छोड़ो, उसके सामने कुछ पैसे फेंकूंगा तो वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आ जाएगा। अब बताओ कौन बेहतर हुआ, नक्श ने सिर हिलाकर कहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। नक्श से अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने इशिका को दोनों हाथों से पकड़कर उसे बुक शेल्फ के लगा दिया था। आज मैं तुम्हें प्रूफ कर देता हूँ कौन बेहतर है। कितनी रातें बिताई हैं तुमने उसके साथ में, मुझे तो कभी करीब नहीं आने दिया तुमने। एक बार करीब आने दो, फिर साबित कर दूंगा कि मैं उससे हर लिहाज में बेहतर हूँ, नक्श तेज सांस लेते हुए बोला। वो इशिका के पास आया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। अभिमन्यु उनसे दूर खड़ा था। उसे लगा कि नक्श और इशिका की ये नॉर्मल बहस होगी, इसलिए वो इस मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहता था। जब उसने देखा नक्श बदतमीजी पर उतर आया है और इशिका के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो गुस्से से उसका चेहरा सर्द हो गया था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, तभी उसने देखा इशिका ने नक्श के घुटने पर जोरदार किक मारी और उसे खुद से दूर धकेल दिया था। नक्श दर्द से कराह रहा था, वो उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। तभी इशिका ने आगे बढ़कर नक्श के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। नक्श को इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इशिका उसे इतना जोर से मार सकती है। वो उसकी तरफ लाचारी से देख रहा था। इशिका ने आगे बढ़कर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे ईगो को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर अब जब तुम खुद को इतना ही बेहतर साबित करने पर आ गए हो तो बता देती हूँ। मेरा पति तुमसे हाइट में काफी लंबा है, दिखने में भी तुमसे ज्यादा हैंडसम है, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। एक और बात, वो तुम्हारी तरह नाजुक नहीं है। हाँ तो तुम्हें इस तरह खुद को बेहतर साबित करने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। मेरा पता नहीं लेकिन आयशा के काम आएगा। इतना कहकर इशिका जाने के लिए पलटी, तभी उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी जो गुस्से से नक्श को देख रहा था। नक्श अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वो उठा और पीछे से जोर से चिल्लाकर बोला, क्या फायदा उसकी इतनी अच्छी बॉडी या हैंडसम होने का जब वो कुछ करता धरता ही नहीं है। ऑफिस में कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज का ही एग्जाम्पल ले लो इशिका सिंघानिया। इशिका उसे कुछ जवाब देती उससे पहले एक सख्त आवाज आई, और तुम्हें किसने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता? इशिका और नक्श ने दूसरी तरफ देखा तो वहां रोहन खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे और वो नक्श के पास आया। ऐसे लग रहा था जैसे वहां जो भी हुआ वो रोहन से भी छुपा हुआ नहीं था। रोहन को वहां देखकर नक्श ने हैरानी से कहा, तुम इसका इतना फेवर क्यों ले रहे हो? क्या तुम इसके पति हो? बिल्कुल नहीं, ये उम्र में मुझे बहुत छोटी लग रही है, रोहन ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो आगे बोला, अगर मैं इसका पति होता तो अब तक तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता, या मेरी जगह इसका पति यहाँ पर खड़ा होता तो वो भी तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा तुम्हें दे देता। यहाँ चुपचाप खड़े होकर मेरी तरह बात नहीं करता। रोहन की बातों ने नक्श का मुंह बंद कर दिया था। वो थोड़ी देर रुककर बोला, मुझे ये अपनी टीम में चाहिए तो इसका ट्रांसफर कर दो। और मैं अपनी टीम के किसी भी मेंबर को तुम्हें क्यों दूं? ये मेरी टीम में आई है और मेरे पास ही रहेगी, रोहन ने काफी शांति से जवाब दिया। नक्श बहुत जिद्दी था, रोहन उसे काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था। पहले इशिका को रोहन का एटीट्यूड पसंद नहीं आया, लेकिन अब वो जिस तरह से नक्श को हैंडल कर रहा था इशिका को वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। रोहन भी झुकने वालों में से नहीं था।
लक्ष्मी गहरी सांस ली और कहा, जानते हो ना, इसे यहाँ सिफारिश करके भेजा गया है। तुम्हें तो ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, फिर तुमने इसे अपनी टीम में क्यों रख रखा है? ओ रियली, मुझे नहीं पता था कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को परेशान करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे। और सिफारिश की बात कर भी कौन रहा है, खुद की डिग्री देखी तुमने, फिर भी दूसरी टीम के हेड बने हुए हो, रोहन ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। नक्श गुस्से में बोला, हाँ, क्योंकि ये सब मेरा है, मेरी जेनरेशन का मैं इकलौता लड़का हूँ, इन सब पर मेरा हक है। हाँ तो फिर सिफारिश की बात क्यों कर रहे हो? अभिमन्यू ने जैसे खुद को साबित किया, वैसे खुद को साबित करके सब कुछ हासिल करते तो फिर भी समझ आता, रोहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रोहन और नक्श के बीच अच्छा खासा कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। नक्श रोहन को अच्छे से जानता था, वो झुकने वालों में से नहीं था, तो नक्श ने बात बदलते हुए कहा, रोहन तुम्हें पता है डॉक्टर मर्चेंट कुछ दिनों में मेरी रिसर्च टीम में शामिल होने वाले हैं, वो तुम्हारे आइडल है ना, अगर तुम इसे मेरे ग्रुप में भेज देते हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, हो सकता है वो तुम्हारी भी कोई मदद करें। रोहन कब से डॉक्टर मर्चेंट से मिलना चाहता था, वो उनका बहुत बड़ा फैन था, उसे नक्श ने काफी अच्छा ऑफर दिया था। कुछ भी कहने से पहले रोहन ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर सख्ती से कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा ये ऑफर भी मंजूर नहीं है। इससे पहले कि नक्श और बेफिजूल की बकवास करता, रोहन ने इशिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अब तक यहाँ रुकी हुई ही क्यों हो, मेरे साथ ऊपर चलो, आगे से इस आदमी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है।
वहां से जाने से पहले इशिका ने एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं था। इशिका ने राहत की सांस ली। इशिका रोहन के साथ वापस फ्लोर पर आ गई थी। रोहन ने गहरी सांस ली और मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टर मर्चेंट से मिलने का मौका खो दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें और भी चांसेस मिलेंगे, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। अचानक रोहन के दिमाग में नीचे हुई बातें याद आ गईं। उसने इशिका की तरफ गैरिंग वे में देखा और शांत लहजे में कहा, तुम चुपचाप बैठकर कोई काम नहीं कर सकती क्या? मैं नहीं आता तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर देता। तुम ठीक हो ना? उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? इशिका ने हल्का मुस्कुराकर नामे सिर हिला दिया। अब उसे लक्ष्य की बातें याद आ रही थी, जब उसने ये कहा था कि रोहन किसी काम में उलझा हुआ है तभी गुस्सा कर रहा है, वरना वो दिल का एक अच्छा इंसान है। इतनी ही देर में इशिका को रोहन की अच्छाई दिखाई दे गई थी। वहीं दूसरी तरफ नक्श अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी थी। वो मन ही मन बोला, कब तक मुझसे दूर रहोगी इशिका? तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। तुम खुद मेरे पास आओगी और मेरे साथ रहने की भीख मांगोगी। मैं तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगा। नक्श ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत आयशा को मैसेज करते हुए लिखा, तुमने डिनर का कहा था और आज इतने दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ है। जल्दी से डिनर अरेंज करो, मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर मर्चेंट से मिलना है। इसके बाद नक्श अपने केबिन में जाकर काम लग गया था। वहीं दूसरी तरफ से इशिका ने अपने क्यूबिकल में आकर मोबाइल चेक किया तो अभिमन्यु के मैसेज आए हुए थे, जो लगभग एक घंटे पहले के थे। सोर्सेज लाइब्रेरी में जो भी हुआ था उसके बाद इशिका को भी उससे बात करनी थी, इसलिए वो लंच का बोलकर अभिमन्यु के पास उसके कैबिन में पहुंची। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है अभिमन्यु कैसे रिएक्ट करेगा? उस वक्त रोहन के आने की वजह से वो चला गया था। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।